ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आप सभी के सामने आप देख रहे हैं बिंदु दीदी जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। वैसे तो बिंदु दीदी जी किसी परिचय की मुमताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। बिंदु दीदी जी के लिए कहें तो जैसे बड़ी से बड़ी दास्तां भी एक बिंदु से शुरू होती है, ऐसे हमारे प्यारे बिंदु दीदी जी हमारे बीच में हैं, जो हमें बिंदु रूप में टिकने के लिए बहुत प्रेरणा देते रहते हैं। आपका जन्म 1965 में, बाल्यकाल से ही आप शिव पूजा भक्ति भाव से भरपूर थी। इसी के चलते सन 1970 में आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने मास्टर्स की हुई है, इसके साथ साथ बैंक में जॉब भी की हुई है। इसी के चलते आप हेडक्वार्टर में भी अपनी बहुत सारी सेवाएं देते रहते हैं। यूथ विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग और ट्रांसपोर्ट विंग में आपकी विशेष सेवाएं रहती हैं। हेडक्वार्टर में आप सेवा के अर्थ रशिया भी गए हैं। लगभग 50 से ज्यादा भाई बहने आपके अंतर्गत आपकी प्रेरणा पाकर समर्पित हुए हैं और बहुत सारे भाई बहने आपकी क्लासेस से उमंग उत्साह से स्वयं को भरते हैं और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। आपका आज का विशेष टॉपिक रहेगा ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन। एक बार फिर से बिंदु दीदी का तालियों से स्वागत करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के पक्के ब्राह्मण बच्चे, बाप दादा मिलन के लिए शांति वन में, मधुबन में पधारे हैं और आज पहली ही क्लास की शुरुआत हो रही है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम अभी गीत सुन रहे थे, ब्राह्मण जीवन हीरे जैसा जीवन है ना, और उसके साथ क्या था, मोती जैसा मन। हर एक चेक कर ले, अपनी अंतरात्मा से पूछ ले कि मेरा जीवन वर्तमान ब्राह्मण जीवन हीरे जैसा है। हीरे को मोती भी पूरे लग गए हैं या कोई कमी तो नहीं है? क्योंकि जब ब्राह्मण शब्द आता है ना, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आती है कंधों पर, ये हमें ध्यान रखना है। ब्राह्मणों की महिमा संगम युग पर तो है ही है, हमारा ही यादगार भक्ति में भी ब्राह्मणों को सबसे ऊंच कहा जाता है, ब्राह्मण चोटी बाबा भी कहते हैं और भक्ति में भी ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। वो किसका यादगार है और किसका प्रतीक है वो हम सब जानते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक माँ बेटा मार्केट में जा रहे थे, छोटा बच्चा था, ऐसे 7-8 साल का बच्चा था, अपनी मदर के साथ मार्केट में जा रहा था। तो सिपाही पुलिस वाले एक व्यक्ति को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तो माँ से पूछता है, मम्मा जी सिपाही इस व्यक्ति को क्यों पकड़ा हुआ है? तो कहती, बेटा जी चोर है। कहते जी क्या करेंगे इसको पकड़ के? कहते इसको सजा देंगे, इसको जेल में डालेंगे। तो ऐसे मार्केट में चल ही रहे थे, इतने में एक और व्यक्ति होता है जिसके आसपास पुलिस वाले होते हैं। तो बेटा कहता है मम्मी देखो जी एक चोर और आ गया। कहते नहीं नहीं बेटा ये तो राजा है यहाँ का। तो चोर कहेगा तो फिर अपने को सजा मिलेगी, अपने को जेल में डाल देंगे, इसलिए ऊंची मत बोलो और ये चोर नहीं ये राजा है। कहता उनके पास भी पुलिस वाले थे, इसके पास भी पुलिस वाले हैं, तो फिर वो चोर था जो राजा है। कहता मैं समझा नहीं इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा बेटा चोर के जो आसपास पुलिस है वो चोर को चलाती है। चोर को कहेंगे खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाएगा, ये खा ले तो खा लेगा, वो यहाँ ले जाएंगे वो वहां चला जाएगा, वो उनके कंट्रोल में है। और राजा के कंट्रोल में ये पुलिस है। अब राजा जहाँ कहेगा ये पुलिस वाले राजा के पीछे पीछे जाएंगे, यहाँ राजा कहेगा इधर हट जाओ तो वो साइड हट जाएंगे, ऐसा करो तो वैसा करेंगे, वो राजा के कंट्रोल में है। तब ये तो है उस माँ बच्चे की कहानी, लेकिन ये हमारी कहानी भी है। हमारे मन के विचार, हमारी भावनाएं, ये सिपाही हैं। हम चोर हैं या राजा हैं ये हमको देखना है। क्या समझते हो राजा हो या चोर हो खुद के लिए? अब जरा वो नजर खुद पे डालो कि मेरे संकल्पों पर, मेरे आइडियाज पर, मेरे विचारों पर, मेरी भावनाओं पर मेरा कंट्रोल है। अगर मेरा कंट्रोल है तो मैं राजा हूँ। अगर मैं इनके कंट्रोल में हूँ, चाहते नहीं हूँ लेकिन संकल्प चल गया, चाहती नहीं हूँ लेकिन फीलिंग आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम चोर हैं, हम इनके कंट्रोल में हैं, हमें जो जैसे मर्जी चलाएं। इसीलिए ना भक्ति के ग्रंथों में भी आता है कि माइंड इज ए गुड मास्टर और बैड सर्वेंट। अगर आपके कंट्रोल में है आपका मन तो वो अच्छी बात है, गुड मास्टर है। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर सर्वेंट, अगर आप सर्वेंट है वो मास्टर है तो ये बुरा ही बुरा है। इसलिए बाबा का एक गीत भी है, जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। किस किसने सुना है ये गीत? हीरे तुल्य हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, अब हमें इस पर विचार करना है कि मैंने स्वयं के मन को जीता है। क्योंकि एक राजा, मान लो जब बाबा पूछते हैं तो हम हाथ तो खड़ा करेंगे ना, हम राजा हैं। अब कहने मात्र से तो राजा नहीं बन जाएंगे ना, राजा बनने के लिए काम करना होगा, खुद पर काम करना होगा। और आज के इस जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जो दौर चल रहा है, जो बाबा रोज हमें बताते हैं, कितनी सारी चुनौतियां हैं हम सबके सामने, संसार वालों के सामने भी, लेकिन ब्राह्मणों के सामने ज्यादा चुनौतियां हैं संसार वालों से। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हीरे तुल्य जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन हमारा मेंटेन रहे। जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में हमें खुद को भी संभालना है, और इसलिए ज्यादा है क्योंकि बाबा ने हमें संसार को संभालने का, औरों को संभालने का भी काम दिया है। भक्ति में तो एक काम था ना, सिर्फ अपने लिए ही सोचना है, लेकिन अब जीवन उसका जीवन जो औरों के लिए जिया है, ये भी बाबा का गीत है ना, ब्रह्मा कुमारियों ने ये संदेश दिया है, जीवन उसका जीवन जो औरों के लिए जिया है। चुनौतियों के इस दौर में हमें केवल अपने को नहीं, हमें औरों को भी संभालना है। तो हर स्टेप पर सावधानी बहुत जरूरी है। संकल्पों के लेवल से हम जानते हैं, जानते हुए भी हम इग्नोर करते हैं, जानते हुए भी हम अटेंशन नहीं देते हैं। जो बात हम करेंगे थ्योरेटिकल आपको मालूम होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? जब एक भी वेस्ट या नेगेटिव चलता है तो उसमें संकल्प चलना चाहिए, मन खाना चाहिए कि नहीं बाबा की ये छुट्टी तो नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ। क्या सच में एक भी संकल्प किसी के लिए चलता है तो होता है? ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता क्या है? आज की मुरली में भी बाबा ने क्या बताई, शिव बाबा के सिवाय और कोई बात नहीं। पढ़ाई का शौक, जब पढ़ाई का शौक है तो फिर इधर उधर बुद्धि जाती नहीं है। ऑलराउंडर बनना है हमें, हर स्थूल और सूक्ष्म काम सीखना है, अवस्था को भी एक रस बना के रखना है, रहना भी संगठन के बीच में है, संगठन से भागना भी नहीं है हमें। ये भी ब्राह्मणों के लिए चैलेंज है। बाबा ने ये बहुत बार कहा है, आपकी अवस्था की जो चेकिंग है वो संगठन में होती है। जब आप काफी सारे लोगों के बीच में आप सेवाएं करते हैं, जहाँ लौकिक काम करते हैं, जहाँ अलौकिक सेवाएं करते हैं, उस घड़ी चेकिंग होती है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल कितना है, हम राजा है या चोर है। अकेले में तो हर कोई बहुत अच्छा अच्छा होता है ना, जब तक कोई जरूरत ही नहीं पड़ी चेकिंग की। और हमें करना भी सब कुछ है, रहना भी बीच में है, सेवाएं भी करनी है। अभी देखो वर्तमान समय जो चल रहा है, विनाश काल भी है ये, और ये स्थापना काल भी है। स्थापना का कार्य भी चल रहा है, सेवाओं का कार्य भी चल रहा है, स्थिति बनाने का कार्य भी चल रहा है। कितने सारे काम है ब्राह्मणों को। सारे काम भी होते रहे और स्थिति भी मेंटेन होती रहे, इसलिए स्वयंति और सेवा दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। और ब्राह्मणों की महिमा तो भक्ति काल के अंदर भी, ब्राह्मणों को आपको मालूम है कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं ना, उनको छूने का हक केवल ब्राह्मणों के पास होता है। बाकी आम गृहस्थी कहो या पब्लिक कहो, उनके लिए ना वो लगा रहता है आजकल, मतलब आप जाके स्पर्श नहीं कर सकते। उनका कपड़ा बदली करना है, उनका कुछ साफ करना है, उनको कुछ रीसेट करना है, तो ये सारा काम ब्राह्मण के द्वारा होता है। ये रिवाज भी कहाँ से निकला? बाबा बहुत बार कहते हैं ना, देवताएं देवता बनने के लिए, जहाँ देवता युग में जाने के लिए, तो पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है। ब्राह्मण माना जिसका मन भी पवित्र, जिसका तन भी पवित्र, जिसका धन भी पवित्र, जिसके संकल्प भी पवित्र, जिसके कर्म भी पवित्र, जिसके बोल भी पवित्र। इस स्टेज को क्रॉस किए बिना ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये बाबा रोज हमें मुरलियों में पक्का कराते हैं। तो इसलिए सच में मेरा जीवन हीरे जैसा है, हीरे जैसी चमक मेरे में है। वो भी एक बात आती है कि एक बार एक कोई व्यक्ति राज दरबार में गया, उसके पास दो चीजें थी, तो उसने राजा को कहा मैं कई जगह जाता हूँ, इसको पहचानना है, इसमें से एक कांच है एक हीरा है, कौन सा कांच है कौन सा हीरा है। तो लेकिन कोई पहचान नहीं पाया, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको आपके सामने टेबल पर रख दूं। तो सर्दी का मौसम था तो बाहर आंगन में धूप में ही वो राज्य दरबार लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा रखो। तो रखा हुआ जब देखा तो एक जैसे ही लग रहे थे। उसने कहा कि अगर आप इस प्रोसेस में शामिल होंगे तो अगर आप पहचान देंगे तो जो भी हीरा होगा वो आपके राज्य दरबार में रख दिया जाएगा, और अगर आप ना पहचान पाए तो इस हीरे की कीमत जितना आपको राज्य कोष में से मुझे देना होगा। ये उसकी कंडीशन थी। तो राजा को और उसके साथियों को लगा कि बात पैसे की नहीं है, कि राज्य में तो क्या पैसे की कमी थी कि हीरे के बराबर कुछ दे देना उसको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर ना पहचान पाए ये बेइज्जती का सवाल है। तो इसलिए इस गेम में ना ही पार्टिसिपेट किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। तो ये कहते हैं कि हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं कि कौन सा कांच है कौन सा हीरा है। तो वहां एक अंधे बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, तो वो उठ करके पास आता है राजा के, कहता राजा एक चांस मुझे दे दो, मैं ट्राई करता हूं भी। आप तो एक तरह से आपने तो हार मान ही ली है, भले आप इनको दे देंगे या नहीं दे देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट तो हार मान ही ली गई है, तो इसलिए मुझे चांस देने या ना देने से आपको फर्क तो पड़ता नहीं, तो एक चांस मैं लेना चाहता हूं। तो सोचते हैं जंधा व्यक्ति क्या करेगा, इसकी तो आंखें भी नहीं, तो फिर भी कहते हैं चलो इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको दे देते हैं चांस। तो उसको कहते हैं कि ठीक है। तो वो कोई राजा के ही जो वर्कर वगैरह वहां खड़े थे, तो उनको कहता है कि मैंने इन दोनों को टच करना है, और वो टच करते ही बता देता है कि ये कांच है ये हीरा है, और जिसने रखा था वो भी कहता बिल्कुल ठीक बताया है, ये हीरा अब राज्य कोष में ही जाएगा, ये हीरा मैंने दे दिया आपको, कांच की कोई बात ही नहीं थी कि अब ये आपका ही हो गया क्योंकि आपके राज्य के व्यक्ति ने इसको ठीक बता दिया है। लेकिन सबको ये बहुत क्रोस्टी हुई कि ये तो मालूम पड़े कि एक अंधे व्यक्ति ने टच करते ही कैसे पहचान लिया। तो उससे जब पूछा गया, उसने कहा जो हीरा है वो गर्म नहीं होता, जो कांच है वो गर्म हो गया। हम कौन है, हम कौन है, क्योंकि बाबा ने संसार में जितनी कहानियां हैं, बाबा कहते ये सारी कहानियां तुम्हारे जीवन की कहानियां हैं। अगर हम परिस्थितियों में गर्म हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, तो हम कौन है। आपने कहा है ना हमारा जीवन कैसा जीवन है, हीरे जैसा जीवन है, और हीरा तो कभी गर्म होता नहीं है। तो इसलिए ये भी हम सारे चेक कर लेना, थोड़ी थोड़ी चेकिंग अपनी अपनी करते जाएं कि सच में मेरा हीरे जैसा जीवन है। तो हर परिस्थिति में शांत, एक स्लोगन भी यहाँ मधुबन में कहीं पर लगा हुआ है, सच्चा ब्राह्मण या सच्चा योगी वह जो परिस्थितियों में चित्त को शांत रख सके। समझदारी भी यही है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहे। तो इसलिए ब्राह्मण मतलब जो कभी गर्म नहीं हो सकता है, जो विषय विकारों से मुक्त है। ब्राह्मण माना जिसको अपने प्रैक्टिकल जीवन से सेवाओं का शौक है, ब्राह्मण माना एक रस अवस्था वाले, इन एवरी सिचुएशन। क्योंकि हम मुख से कुछ भी कहें कि हमारा जीवन हीरे जैसा है, लेकिन लोग तो प्रैक्टिकल में देखेंगे ना। समझो आप कहो कि आज मैंने 4 घंटे तपस्या की, और आपका अभी 12:30 बजे तपस्या पूरी होगी 4 घंटे की, आप 8:30 से 12:30 तक तपस्या कर रहे हैं, और 12:15 बजे कोई आपको आके हिलाता है, और आप एक ना बदल, मैंने सोचा था मैं 4 घंटे योग करूंगा, इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया बीच में, जो पौने चार घंटे से तपस्या में बैठा है, भगवान के प्यार में डूबा हुआ, वो उठते ही गुस्सा कर सकता है? उठने से भी पहले वहां बैठा बैठा ही? चार घंटे योग किया है तो उसका कोई चार घंटे तो कम से कम 100% ही असर चाहिए। वैसे तो जीवन ही है, लेकिन फिर भी शुरू में तो चार घंटे तप के बाद तो आवाज में आना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, और बोलना जहां थोड़ा तीखा बोलना वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन जो हीरे तुल्य जीवन है, वो हर परिस्थिति में शीतल, शांत, खुशनमय, आनंद में, ये सच्चे ब्राह्मण रूपी हीरे की पहचान जो दुनिया वालों को दिखाई दे। क्योंकि जीवन तो दुनिया वालों को दिखाई देता है ना, हम शब्दों द्वारा तो कह दें हमें भगवान मिल गया और उसके बाद हम कुछ उलट पुलट भी कर रहे हैं तो कैसे मानेंगे? इसलिए बाबा हमेशा प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं पर हमारा बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। और भी एक मजेदार बात ये है कि मुगल शासक जो हुए हैं ना, उन्होंने भी ब्राह्मणों की महिमा में बहुत कुछ कहा है। मुख्य शासकों ने, चाहे राजा अकबर हो, चाहे राजा सिकंदर हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, उन्होंने ब्राह्मणों की महिमा में बहुत कुछ बोला है। उनके शब्द, उनके ही शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उसका वो कोई बीके भी नहीं, उनको कोई इस ज्ञान का कोई मतलब भी नहीं, कोई आप ब्राह्मणों की बात नहीं, एक जाति के ब्राह्मण, और आपका तो उससे भी ऊंचा है, कर्म के ब्राह्मण। और जब जाति के ब्राह्मणों की महिमा आती है, वास्तव में वो होती तो कर्म के ब्राह्मणों की ही है ना। ये भी बाबा का एक गीत है, जन्म से नहीं कर्म से बड़े। तो वास्तव में तो ये उस जमाने की बातें हैं जब उनका जन्म और कर्म दोनों ही सच्चे ब्राह्मणों वाला हुआ करता था। तो राजा अकबर ने कहा, ब्राह्मणों को दोस्ती करके हराया जा सकता है, लेकिन लड़कर के नहीं। लड़ाई में ब्राह्मणों को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ईश्वरीय ताकत है, तो उनको कोई पराजित नहीं कर सकता है। राजा सिकंदर ने कहा, जंग में उतर जाने के बाद ब्राह्मण को रोकना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। ये उनकी, जब वो राजा हुए उस जमाने की वर्डिंग है। इतनी ब्राह्मणों की ताकत मशहूर है, ब्राह्मणों की इतनी महिमा संसार के अंदर है। और मोहम्मद गौरी ने कहा, अगर ब्राह्मण से कुछ चाहिए तो मांग के ले लो, धोखे से छीनने पर तुम्हारा नामो निशान मिट सकता है। मांग के ले लो, धोखा नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते आप। ये हम सबकी कहानी है। इतनी ताकत है ब्राह्मणों की, अपनी ताकत को हम पहचाने। लेकिन ये मन में ये भाव तब आता है जब वो प्रैक्टिकल जीवन होता है, नहीं तो बहुत सारे ब्राह्मण डरते हैं। वो क्या कहेंगे, अरे वो सामने वाला तो ज्ञानी है, उसको क्या पता? उसको पता नहीं है, लेकिन आपके वाइब्रेशन, आपकी ताकत उसको पता देगी कि आप क्या है, पता पड़ता है। सीता का जो मिसाल है, ये किसका मिसाल है? हम ब्राह्मणों का ही तो मिसाल है ना, कि रावण ने जैसे ही कोशिश की उसको पकड़ने की तो रेखा को आग लग जाती थी। ये वो पवित्रता का बल ही तो दिखाया है। उसने रेखा से बाहर निकाला, मर्यादा की लकीर से बाहर निकली तो रावण के चुंगल में आई, लेकिन जब तक मर्यादा की लकीर के अंदर हैं ब्राह्मण, तब तक उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और दूसरी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो भूल जो हुई उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी वो भूल अनजाने में हुई, जानबूझ के नहीं हुई, वो पहचान नहीं पाई, फिर भी रावण उसको टच भी नहीं कर सका। इतना लंबा टाइम शोक वाटिका, बाबा कहते हैं ना वो अशोक वाटिका नहीं, वो तो शोक वाटिका थी जिसमें सीता शोक में थी। लेकिन उस शोक वाटिका में रावण ने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अनजाने में हुई भील थी। जो भूल थी उसका भुगतान भी किया, लेकिन उसकी प्योरिटी भंग नहीं हो सकी, क्योंकि वो अनजाने की भूल थी। तो ऐसे यूं तो ब्राह्मण भूल कर नहीं सकते हैं, ब्राह्मणों की इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन अनजाने में कभी हो भी जाए तो बाबा कभी कभी कहते हैं ना, अनजाने में कभी हो जाए और बाबा को सच सच बता दो तो बाबा आधा माफ कर देते और आधा आपको अपने तप के बल से ठीक करना है। तो सच्चे ब्राह्मणों की ताकत को पूरा संसार जानता है, वो ताकत मेरे में कितनी है, बाबा में निश्चय कितना है। एक बार बहुत पुरानी बात है, मनोहर दादी जी क्लास करा रहे थे, कहते सच्चा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण जिसका जीवन हीरे तुल्य बन गया, तो उसकी पहली निशानी तो उसका विरोध जरूर होगा। क्या निशानी पहली? उसका विरोध जरूर होगा। लेकिन हाँ, दादी की दूसरी लाइन थी, अगर वो विरोध लंबा टाइम चलता है, समझो कोई कहे 10 साल से ही मेरा तो विरोध चल रहा है, 15 साल से ही चल रहा है, तो इट मीन्स आपकी तपस्या की कमी है। आजकल जगह जगह हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, तो वहां पर आरएसएस वालों की तरफ से होता है, वो लगभग मुझे लगता है ऑल इंडिया में ही चल रहे हैं, क्योंकि 100 साल मना रहे हैं। तो वहां एक भाई जो थे स्पीकर, उन्होंने बोला, कहते पहले लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये क्या करेंगे, फिर दूसरा विरोध किया, और तीसरा एक्सेप्टेंस, स्वीकार किया। तो मुझे सुनते लगा कि ये तो हम ब्राह्मणों की कहानी है, सच्ची कहानी हमारी है। तो फिर उसके बाद मुझे बोलना था उनके बाद, तो फिर मैंने कहा भी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हमेशा कोई भी व्यक्ति, जैसे बाबा के बच्चे भी जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, ले अब ये ब्रह्मा कुमार बनेगा, कोई कहेगा 900 चूहा खाके बिल्ली हज को चली, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और देखते हैं कितना समय करते हैं, क्या करते हैं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कुछ कुछ बोलते हैं, अर्थात मजाक उड़ाते हैं। जब थोड़ा सा आप ट्रैक पर आ जाते हो, कुछ करने लग जाते हो, कुछ बन जाते हो, फिर विरोध शुरू होता है, क्योंकि विरोध कभी किसी छोटे व्यक्ति का नहीं होता। ये तो आप कोई संसार का इतिहास पढ़ लो, कभी सुना है कोई रिक्शा वाले के अगेंस्ट लोगों ने हड़ताल की हुई है, कोई एक व्यक्ति के अगेंस्ट कोई विरोध चल रहा है, या कोई रिक्शा वाला, या कोई मजदूर भिखारी, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी होती है तो किसकी होती है, विरोध होता है तो किसका होता है? बड़े बड़े ऑफिसर्स का, बड़े बड़े मिनिस्टर्स का, बड़ी बड़ी पोस्ट वालों का। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे भी जब थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं आध्यात्मिकता में, तो विरोध होता है। और तीसरा स्टेप एक्सेप्टेंस, फिर कुछ समय के बाद स्वीकार करते हैं, और चौथा स्टेप ब्राह्मणों का फिर महिमा भी होती है। ये 4 स्टेप है, मजाक उड़ना, विरोध होना, एक्सेप्टेंस देन महिमा। जी दादी कहती थी कि अगर लंबा टाइम चल रहा है तो आप अपने पर अटेंशन दो, क्योंकि ये जो इतना ऊंचा ज्ञान बाबा दे रहा है ना, ये वास्तव में ज्ञान है ही उनके लिए जिनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, जिन्होंने बुलंदियों को छूना है, जिन्होंने बड़े बड़े काम करने हैं। बाबा बड़ा, हम उसके बच्चे बड़े। कोई छोटा भी किसी बड़े के साथ रिश्ता जोड़ लेता है तो वो भी बड़ा हो जाता है, और फिर काम भी बड़े बड़े करने हैं, फिर स्थिति भी बड़ी बनानी है, अर्थात अच्छे वाली बनानी है। तो इस जिम्मेवारी को हमें समझना है। ये हमें 24 घंटे याद रहे कि मैं ब्राह्मण, बाप दादा का बच्चा, होवनहार देवता, हीरे तुल्य मेरा जीवन, हीरे तुल्य मेरी सोच, हीरे तुल्य मेरे बोल, हीरे की चमक केवल पड़े की नहीं, जब उसको यूज करते हैं ना, कितना भी यूज करो उसकी चमक में तो भी कोई कमी नहीं आती है, वो हीरा है। तो हम भी कितना भी संगठन में रहे, सबके बीच रहे, तो हीरे की चमक में फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे हम दूसरी चीजों का ध्यान देते हैं ना, ऐसे ही अपने बोल का, अपने संकल्प का, उसको आप भावनाओं की भाषा कह सकते हैं, नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा। तो ये सारी चीजें भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम दूसरे प्रोडक्ट का ध्यान देते हैं ना, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसके आधार पर हमारा फ्यूचर ब्राइट है, लाइट है, डार्क है, कैसा है, वो हमारे इन प्रोडक्ट्स के बेस पर ही हमारा फ्यूचर समाया हुआ है। बाबा ने बहुत ऊंची दृष्टि से देखा है। मैं हमेशा कहती हूँ, जितनी ऊंची दृष्टि से बाबा देखते हैं और बात करते हैं, आप देखो जब भगवान मुरली चलाते हैं तो आप सोच के देखो बाबा कैसे बात करते हैं। जैसे मेरे सामने देवताओं की सभा बैठी है और हम जब सुनते हैं तो हम गृहस्थी बन के सुनते हैं, हम कहते हैं बाबा तो ठीक कहता है, दादियां दीदियां तो ठीक कहती हैं, पर हम गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी में कई चीजें हो नहीं पाती। बाबा कभी भी आप लोगों को गृहस्थी की नजर से देख के बात नहीं करते। बाबा की कोई मर्यादा है कि ये समर्पित के लिए है, ये गृहस्थियों के लिए है, ये कुमार कुमारियों के, सबके लिए समान। जब पद सबके लिए, प्राप्ति सबके लिए समान है तो मर्यादाएं भी समान है। और भगवान कहता है ऐसा करो और हम कहते हैं गृहस्थी में पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब भगवान को ज्ञान की कमी हो गई, उसको पता नहीं है गृहस्थी में पॉसिबल है या नहीं। जो उसने हमें ज्ञान दिया है, मतलब उसको पूरा पता नहीं है कि गृहस्थी में पॉसिबल है या नहीं। मतलब एक एक शब्द हमें कितना सोच के बोलना है। जब हम ये बोलते हैं कि गृहस्थी में नहीं हो पाता, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हम भगवान के महावाक्यों की इंसल्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हो सकता है और हम कहते हैं नहीं हो सकता है। वो कहते हैं बहुत सहज है और हम कहते हैं बहुत मुश्किल है। व्हाट इज दिस? इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थी नहीं, अपने आप को ट्रस्टी समझ के चलो, तभी बाबा पक्का कराता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो। अब ये बातें भी पहले से गीता में लिखी हुई हैं, बाबा केवल उनका अर्थ बता रहे हैं, एक्सप्लेन करा रहे हैं, उस स्थिति में स्थित करा रहे हैं। इसलिए बहुत बार जब पब्लिक में जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि हम आपको नई बात नहीं बता रहे, जो कुछ आपने ग्रंथों में पढ़ा है, भगवान कहते हैं वक्त आ गया इसको अमल में लाने का। पढ़ा तो तुमने है, पन्ने तुमने पलटे हैं, और अमल में अभी बाबा के बच्चे ला रहे हैं, गाया उन्होंने विषय विकार मिटाओ और मिटा रहे हैं बाबा के बच्चे। अब कितने परसेंटेज में मिटा पाते हैं वो हम पर निर्भर करता है। इसलिए ज्ञान का बल, योग का बल और संपूर्ण पवित्रता का बल, ये तीन बल बाबा हमेशा व्यक्त मूल्यों में पक्का कराते हैं कि ये बहुत बड़े ताकत है तुम्हारी। ज्ञान सुनाने में बाबा के बच्चे होशियार हैं, ये भी बाबा बहुत कहते हैं मुरलियों में, लेकिन योग का बल और पवित्रता का बल, जब तक ये अटैच नहीं है ज्ञान बल के साथ, तब तक ज्ञान बल बल नहीं रहता है, कमजोरी पड़ जाती है। जैसे बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्या अपना ली है, तन को पवित्र कर लिया है, लेकिन मन के व्यर्थ संकल्पों पर उनका कंट्रोल नहीं है। तो जो ब्रह्मचर्या का बल भी है ना, वो भी कमजोर पड़ जाता है, व्यर्थ संकल्प उसको ओवर पावर कर लेते हैं। बाबा के हम बच्चे बने, हमने मोटी मोटी धारणाएं कर ली है स्थूल में, प्योरिटी, प्याज लहसुन, बाहर का खाना, नहाना धोना, रोज मुरली सुनना, वो बहुत अच्छी बात है। ये स्थूल ही सूक्ष्म की ओर लेके जाते हैं, सूक्ष्म धारणाओं की ओर, लेकिन सूक्ष्म की ओर जाने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। केवल स्थूल धारणाएं सफिशिएंट नहीं है हमें राजा बनने के लिए, महाराजा बनने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए, ये सफिशिएंट सोर्सेज नहीं है। एक पहला कदम कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिकता की ओर, राजाई पद की ओर, देवताई रेस की ओर एक पहला कदम है, और पहला कदम आपने ठीक रख लिया है। मैं एक बात बहुत बार कहती हूँ, सोचती हूँ कि हम श्रीमत का पालन करते हैं मनमत से, हम श्रीमत का पालन करते हैं वो भी मनमत से करते हैं। मेरे मन को क्या ठीक लगता है बस उतना की करना है। मान लो ब्रह्मचारी तो बन गए, प्याज लहसुन तो छोड़ दिया, उसके लिए अपने साथी को भी नाराज कर लिया, लेकिन फिर खाने पीने में क्या ऐसे ना डिसर्विस होती है, खाना ही पड़ता है। डिसर्विस तो आपकी उस बात से भी हो सकती है जो आपने पहले ही कर रखा है, लेकिन वो आपके मन ने स्वीकार कर लिया। जो मीट मांस नहीं खाते उनको कोई कितना भी कह दे वो कहते मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसका मन मानता है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें स्पोज की 20 श्रीमत की लिस्ट दे दी, हम उसमें से 15 पालन करें, हम समझते हैं मैं 75% पालन कर रहा हूँ, काफी अच्छी स्कोरिंग है मेरी। उस 20 में से मैंने 15 सिलेक्ट कर ली कि मेरा मन इन बातों के लिए मानता है, भगवान का मेरे लिए क्या आदेश है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरी अंतरात्मा, मेरा मन, मेरे घर के हालात, मेरी सोच, वो क्या कहती है मुझे वो पालन करना है, लेकिन भगवान क्या कह रहा है मुझे वो करना है। इस पर है, इसलिए आज भी बाबा ने क्या कहा, एक्यूरेट रहना, गफलत नहीं करना, श्रीमत का पालन करना, ये हीरे तुल्य ब्राह्मण जीवन की ही तो सारियां, जो आज का प्रश्न उत्तर था मुरली का, वो हीरे तुल्य जीवन की ही तो सारी बातें थी। बाबा ने कहा हमारा एक भी कर्म ऐसा ना हो जो यज्ञ के लिए विघन रूप बने। अब हम जानबूझ के कुछ नहीं करते विघन, इसमें नो डाउट, बाबा के बच्चे इतने पवित्र तो हो गए हैं, ऐसे ब्राह्मण तो बन गए हैं कि वो आई थिंक कि जानबूझ के कोई विघन सोच करके विघन तो नहीं डालते, लेकिन इनडायरेक्ट हम विघन रूप बनते हैं। हमारा ऊंची आवाज में बोलना, हमारा मुख से कोई गलत शब्द का निकल जाना, क्या इससे डिसर्विस नहीं होती? आपका घर में ठीक से ना चलना। मैं हमेशा कहती हूं कि जो स्थूल धारणाएं आप करते हो ना, इससे भी घर वाले नाराज होते हैं। होते हैं या नहीं? आप ब्रह्मचर्य अपनाई, साथी नाराज, अगर ज्ञान में ना चले, बिना प्याज की सब्जी खाने लगे तो मम्मी नाराज। उसमें भी कोई मैरिड है घर वाले, किलो दो दो बार सब्जी बनाओ। ये हमने उनसे कुछ छीना है, उनको कुछ दिया नहीं है, वो आपको कॉपरेट कर रहे हैं, प्योरिटी में कॉपरेट कर रहे हैं, बिना प्याज की सब्जी देने में कॉपरेट कर रहे हैं। उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? अगर एक दिन भी उन्होंने गलती से प्याज डाल लिया, हम लड़ाई करते हैं, तेरे को पता है मैं नहीं खाता, नहीं खाती तो तुम ध्यान क्यों नहीं देते? फिर भी हम रोब रखते हैं इस बात का भी। हम उनको क्या दे सकते हैं बदले में? ये इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी धारणाओं में, पहले आप उनके ज्यादा काम करते थे, अब आप थोड़ा थोड़ा सेंटर का काम भी करने लग गए, सेवाएं भी करने लग गए, घंटा दो घंटे आने जाने सहित दो घंटे क्लास में भी आने लग गए, वो आपको उसमें भी कोऑपरेशन दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है कि ये टाइम तो जो जाएंगे ही जाएंगे, ये नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया, वो मैनेज कर रहे हैं हमें, वो हमें साथ दे रहे हैं, क्लास करने भेजते हैं, बिना प्याज की सब्जी देते हैं, हमें ब्रह्मचर्या में हेल्प करते हैं, हमारी खान पान की धारणाओं में, घर में कोई चीज आती है तो भी सोचते हैं चलो उन्होंने बाजार वाला तो खाना नहीं, चलो ये फल वो खा लेंगे, ये उनके लिए रख दो। कितना सारा वो आपको कोऑपरेशन देते हैं, आप उनको बदले में क्या देते हैं? आप उनको अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं, कोई बात हो जाए उनको क्षमा कर सकते हैं, भूल सकते हैं, कोई स्थूल में उनको आपकी मदद चाहिए मर्यादा में रह करके वो देनी चाहिए आपको, वो गुस्सा करे आप शांत रहें ये मदद देनी चाहिए, वो कुछ बोले लेकिन आप मुस्कुराते रहें, अपना ईगो ना दिखाएं, अपनी ताकत ना दिखाएं। स्थूल ताकत दिखाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें कुछ देना है उनको। वो बल्कि कुछ विरोध करें तो भी सोचो कोई बात नहीं, देखो मेरे पास तो भगवान की ताकत है, बाबा की ताकत है, ये बेचारे तो अभी बाबा के बच्चे उस रूप में नहीं ना, उन धारणाओं की ताकत नहीं, बल्कि ये कहो बाबा जी आपके बच्चे हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इनमें ताकत नहीं है, जो ताकत आपने मुझे दी है अपने इन बच्चों को भी वो ताकत दो, ताकि वो खुशी से कॉपरेट करें। कॉपरेट तो कर रहे हैं लेकिन और खुशी के साथ करें और साथ लग जाएं, वो तभी पॉसिबल है जब प्रैक्टिकल में हमारा जीवन होगा। हीरे तुल्य जीवन, लोगों को पता चलना चाहिए कि इनका जीवन हीरे तुल्य है। आपने ब्रह्मचर्य अपनाई या आपने खान पान शुद्ध किया, वो आप पर तरस ना खाएं। अगर आज की डेट में आपको ज्ञान में चलते 5-6 साल हो गए लेकिन आज भी कोई तरस खाता है, देखना बिचारी बेचारा, ये तो प्याज वाला भी नहीं खाते, ये तो बेचारे ने छोटी सी उम्र में ये क्या कर लिया, उनको ये लगे अरे वाह ये इनकी धारणाओं से देखो इनके चेहरे पर चमक कैसी है, इनकी रूहानियत कैसी है। ये है वास्तव में असली सेवा, ये है बेहद की सेवा, जब आपके प्रैक्टिकल जीवन से उनको भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने की प्रेरणा मिले, उनको ऐसा ना लगे कि क्या इन्होंने तो ये क्या जीवन बना लिया। वो तब हो सकता है जब आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिकल जीवन के बिना वो बाबा के बच्चे नहीं, घर वालों को बाबा के बच्चे बनाना फैमिली के सदस्यों को काफी मुश्किल काम होता है, वो उसका एक ही साधन है आपका प्रैक्टिकल जीवन, बाकी आप मुख के द्वारा सुना सुना के उनको बीके नहीं बना सकते। ये याद रखना, मुख के ज्ञान से वो बीके नहीं बनेंगी, आपका जीवन बोले, बाबा कहते कोई गीता का भगवान भी तुमको सिद्ध करना है तो शब्दों के द्वारा नहीं होता, आपका जीवन गीता बन जाए। जो भी आपके जीवन रूपी किताब को पढ़े, आपसे मिले, आपसे बात करे, तो उसको लगे कि इनका जीवन तो चलती फिरती गीता है, खुली किताब है इनका जीवन, तो वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। हम ये भी सिद्ध करना चाहते हैं कि बाबा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, बाबा रोज हमें काम देते हैं, तो बाबा कहते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाओ कि आपको कौन पढ़ाता है, आपका जीवन बोले। वो पूछने के लिए मजबूर हो जाएं कि आप में इतनी ताकत कैसे आ गई, चाहे वो धारणाओं की है, चाहे वो त्याग की है, चाहे वो भाग्य की है, चाहे वो रिलेशनशिप की है। हमारे संबंध पहले से ज्यादा अच्छे होने चाहिए, लौकिक परिवार के साथ भी तो सेवा होती है। मुझे याद है एक बार हम ORC में गए, आशा दीदी से मिल रहे थे, तो कोई भाई थे मेरे साथ, तो दीदी ऐसे जैसे मिलते हैं ना, प्यार से पूछा कि कैसे है, क्या करते हैं, सारी बात पूछी। तो उन्होंने कहा बस क्या सेवा करते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे तो दीदी सब बहुत अच्छा है, बस एक ना वो मदर बुजुर्ग है, उसका बंधन है जिस कारण मैं कम निकल पाता। तो दीदी ने ना एकदम करेक्ट किया, दीदी कहते माँ और बंधन, ये शब्द आगे से कभी नहीं बोलना। उस माँ ने जन्म दिया तब तुम बाबा के बच्चे बने, सिर्फ परलौकिक माँ बाप का ये एहसान नहीं, लौकिक माँ बाप का भी होते, उनकी सेवा भी ईश्वरीय सेवा है। अगर आप प्यार से सेवा करते हैं तो लोग कितना खुश होते हैं। मान लो किसी के दो बेटे हैं, एक ब्रह्मा कुमार है और एक संसारिक जैसे आम होते हैं, और ब्रह्मा कुमार माँ बाप की सेवा करे, दूसरा करे ना, तो सच्ची बताओ इससे सेवा होगी या नहीं होगी। भाई ये मानना पड़ेगा, ये जो बीके है ना, ये बहुत प्यार से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इससे खुश होके कोई बाबा के घर में आ सकता है। इसलिए बड़ी दादी दीदियां सिखाती हैं कि इन चीजों को बंधन कहना या इस बंधन से छूटने का प्रयास करना ये ठीक नहीं है। आप दोनों काम कर सकते हैं, प्यार से सेवा भी कर सकते हैं और ईश्वरीय सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी एक एक संकल्प ब्राह्मण चलाता है वो हीरे तुल्य होना चाहिए, तो जीवन हीरे तुल्य है, क्योंकि हमारे संकल्प का सीधा इफेक्ट हमारे ब्रेन पर आता है। ये आप कभी सूक्ष्म में नोट करना इन चीजों को, और उसका इफेक्ट फिर हमारी बॉडी पर आता है, उसके आधार पर हमारी बीमारियों और तंदुरुस्ती का बहुत गहरा संबंध है हमारे संकल्पों का, हमारी शारीरिक व्याधियों के साथ भी संबंध है, मन के साथ तो है ही है। आज संसार के अंदर भी बीमारियां क्यों बढ़ गई, और वो ब्राह्मणों में भी हैं, किसी का बीपी बढ़ घट रहा है, किसी का शुगर बढ़ घट रहा है, किसी को तेजाब है, ये सारी चीजों का संबंध भी हमारे संकल्पों के साथ है। आप कभी देखेंगे जो व्यक्ति खुश रहते हैं, जिनकी धारणाएं स्ट्रांग है, उनको ये सब बीमारियां जल्दी नहीं आती हैं। ये क्वालिटी, ये प्रोडक्ट जो संकल्पों का है ना, इसके पूरा हमारा जीवन ही इस पर आधारित है। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे जिस ज्ञान से संसार बदल सकता है, सुनाते हैं ना हम सारा दिन लोगों को कि ये संसार बदलने वाला है, सच्चू की दुनिया आने वाली है, जिस ज्ञान से संसार बदल सकता है, क्या उस ज्ञान से तुम्हारे संस्कार नहीं बदल सकते। कितने वर्षों से ब्राह्मण उस पे काम करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अटेंशन की बात है, मुख्य बात है अटेंशन देने की, ये ध्यान रखना। सिर्फ हम अलवेलेपन में चलते हैं, हम बातों को लेट गो नहीं कर पाते हैं। हर स्टेप पर कुछ बोल रहे हैं, याद रहे। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा सम्मान है, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। बाबा ने कुछ समय पहले एक मुरली में कहा कि तुम लक्ष्मी नारायण को याद करो तो बाबा याद आएगा, बाबा को याद करो तो लक्ष्मी नारायण याद आएंगे। इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में हो बाबा क्यों कहता है, क्योंकि बाबा ने कहा इनको देखते ही याद आएगा कि ये लक्ष्य हमें किसने दिया है, स्वयं भगवान ने, और भगवान को देखते ही क्या लक्ष्य दिया है, और लक्ष्य जब सामने है तो लक्षण पर ध्यान जाता ही जाता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी किसकी संतान, ब्रह्मा की, शिव बाबा की। तो इसलिए क्या ब्रह्मा कुमार कुमारों को छुट्टी है ऐसा सोचने की, बोलने की, करने की? थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से भी पहले सोचो। संकल्प आ भी गया ना, तुरंत बाबा को सॉरी करो। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अगर कुछ सोचने के बाद या मुख से निकल जाने के तुरंत बाद आपको गिल्टी फील होता है, कुछ गलत निकलने के बाद, कि नहीं एज ए ब्राह्मण या एज ए होवनहार देवता या होवनहार फरिश्ता तो ये अलाउड नहीं है, ये गलत हो गया, अगर गिल्टी फील होता है ना, तो बाबा ने कहा जी देवता बनने वालों की निशानी है। इट मीन्स तुम्हारे अंदर देवतव है, निशानियां। हमें किसी को नहीं देखना, हमने खुद पर काम करना है। खुद को बदलने की ताकत संसार की सबसे बड़ी ताकत है, ये लिख लो सभी। खुद को बदलने की ताकत संसार की सबसे बड़ी ताकत है, तो ये जीवन ही रेतुल्य बन सकता है। इसलिए खुद पर काम करो। बाबा के गीतों में भी कितनों में है ना, खुद को बदल लो जीवन बदल जाएगा, संसार बदल जाएगा। हम दूसरों को बदलने का ही प्रयास करते रहते हैं हमेशा। अगर आपके पुरुषार्थ में भी कमी है तो भी क्या कहेंगे, बस वो थोड़ा सा ना घर के हालात ऐसे हैं, अगर थोड़ा सा फलां व्यक्ति ठीक हो जाए ना तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो जाए, थोड़ा सा मेरी सेहत ठीक हो जाए ना मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो जाए, थोड़ा सा ये सर्दी में मुझे मुश्किल लगता है, थोड़ा सा ये सर्दी निकल जाएगी ना फिर अच्छा हो जाएगा, ये ज्यादा गर्मी मुझे माफिक नहीं, थोड़ी सी गर्मी निकल जाएगी ना फिर पुरुषार्थ अच्छा हो। कभी मौसम को दोष, कभी सेवा साथियों को दोष, कभी अपने तन को दोष, कभी मेरे पास धन की कमी है धन को दोष, हम किसी ना किसी को दोष देते रहते हैं कि मेरे पुरुषार्थ की ये कमी है। जैसे लौकिक पढ़ाई में भी क्या होता है, जिन बच्चों ने कुछ बनना है तो बन जाते हैं। हम पढ़ते हैं ना कहानियां अखबारों में कि कोई मिस्त्री का बच्चा, कोई मजदूर का बच्चा वो IAS बन गया, उसने कभी इसको अड़चन नहीं बनने दिया कि मेरा बाप गरीब है इसलिए मैं कर नहीं सकता। लेकिन जिसने नहीं करना वो क्या कहेगा, मेरा बाप गरीब है इसलिए मेरे पास पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं है। और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, अगर आप एक एक की लाइफ हिस्ट्री फोड़ लो ना, आपको 90% साधारण परिवारों के बच्चे होंगे, मुश्किल से 10% होंगे जो अमीरों के बच्चे होंगे, जो IAS या IPS या इससे भी बड़ी पोस्टों पर जो बैठे हैं। तो इसलिए हमारे इस ब्राह्मण जीवन को हीरे तुल्य मेंटेन करके रखने के लिए कोई भी बात मेरे पुरुषार्थ के बीच में विघ्न बन नहीं सकती। बस सिर्फ यहाँ दृढ़ संकल्प चाहिए कि मुझे बाबा की श्रीमत का, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, एक्यूरेट पालन करना है और बाबा का एक वारिस बच्चा बनकर के रहना है। तुझे ब्राह्मण जीवन, हीरे तुल्य जीवन, एक सार्थक जीवन, एक सिग्निफिकेंट जीवन, ये हो सकता है और सब इस जीवन को एंजॉय करें। इसलिए लास्ट में ये दो शब्द हैं।
सत्युग